चक्रवर्ती का ये कथानक चल रहा है, जिनके 923 हजारों ऐसे लाखों पुत्र पुत्रियां थी, संख्याओं पुत्र पुत्रियों कहा गया है, लेकिन 923 ऐसे पुत्र थे, ये तो हमने नहीं ज्यादा पढ़ा कि कौन सी रानी से जन्मे थे, लेकिन चक्रवर्ती के वे 923 पुत्र जन्म से गूंगे थे, बोल नहीं पाते थे और वे अपना कोई एक्सप्रेशन नहीं कर पाते थे। चक्रवर्ती पिता की संपत्ति का उपभोग भी मौन पूर्वक करते थे। एक दिन भरत चक्रवर्ती उन्हें अपने साथ भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में ले गए। अब वहां जाते ही वे बोलने लग गए। जब लोग ऋषभ देव भगवान की समूह शरण के चमत्कार की, आज भी समूह शरण जो बने होते हैं ना, समूह शरण की फेरी लगाओ, आपके घुटने का दर्द मिट जाएगा, आपके सिर का दर्द मिट जाएगा, और भी कोई बीमारियां हैं नष्ट हो जाती हैं कृत्रिम समूह शरण में। और जहाँ साक्षात तीर्थंकर भगवान सचेतन अवस्था में विराजमान रहते हैं, उस समूह शरण की तो बात ही क्या है। वहां पहुंच कर वे बोलने लग गए और उन्होंने भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि से जाना कि भव्य आत्माओं, तुमने अनादि काल से निगोद में रहते हुए आज पहली बार मनुष्य की पर्याय पाई। ये एक रेयर केस है जो केवल भरत चक्रवर्ती के पुत्रों के बारे में मिलता है। पहली बार मनुष्य पर्याय पाई है जान करके एकदम वे बोध को प्राप्त होते हैं और तुरंत वहां पर दीक्षा धारण कर लेते, सारे वस्त्र वगैरह उतार करके धन वैभव का त्याग करके वे दीक्षित हो जाते हैं, तपस्या करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे पुत्रों का मंदिर बन रहा है, आप समझो। इसलिए हमने भरत चक्रवर्ती की इस कथानक को प्रारंभ किया कि भाई वो 923 पुत्र कहां से आए थे, किसके पुत्र थे, इसलिए आपको मूल में पहुंचाती हूँ कि ऋषभ देव भगवान तीर्थंकर, उनके पुत्र प्रथम पुत्र चक्रवर्ती और उनके 923 पुत्र भी मोक्ष चले गए। ऋषभ देव भगवान के सब 101 पुत्र मोक्ष चले गए और अयोध्या की धरती पर इसीलिए इन सब का इतिहास साकार किया गया। ये मंदिर नहीं, ये इतिहास है। ये मंदिर नहीं, ये अयोध्या का वैभव है। ये मंदिर नहीं, ये अयोध्या की संस्कृति का चरित्र चित्रण है। तो आप सबको इनमें बहुत गहरी गहरी चीजें बताई जाएंगी। मुनि सूरत भगवान का मंदिर, ऐसे तो साउथ स्टाइल की प्रतिमा बन करके आ रही हैं, लेकिन 9 लाख साल पहले का इतिहास यहाँ पर बताने जा रही है ये प्रतिमा, कि 9 लाख साल पहले इस अयोध्या में मुनि सूरतनाथ भगवान का मंदिर था और वहां पर आचार्य द्युति महाराज जिनकी कांति फैलती थी और वे गृहस्थों को सबको संबोधन प्रदान किया करते थे, अपने संग के साथ रहते थे। आज मुनि सूरतनाथ का मंदिर नहीं है, इसलिए ज्ञानमती माता ने मुनि सूरतनाथ भगवान का मंदिर बनाने की प्रेरणा दी। इसलिए मैंने कहा यह मंदिर नहीं है संस्कृति है, ये मंदिर नहीं है इतिहास है, और अनेक इतिहासों को अपने अंदर संजो करके रखने वाले इन मंदिरों का दिग्दर्शन करके आपको ऐसा लगेगा हम चतुर्थकालीन अयोध्या में बैठे हैं, चतुर्थकालीन अयोध्या की वंदना कर रहे हैं, और आने से ही नरक और तिर्यंच गति टल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, देव गति का टिकट आप सबको मिलने वाला है, क्योंकि अयोध्या और सम्मेद शिखर के लिए ही कहा है, एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशु गति नहीं होई, नरक और पशु गति टालने का एक ही उपाय है, ऐसे 700 तीर्थ की वंदना करें। तो भव्य आत्माओं, वहां भरत महाराज एक बार विराजमान थे और जिन अपनी प्रजा के लोगों को बुलाया था उन सब के सामने वे उपदेश देते, उनको प्रसन्नता होती है कि मेरे राज्य के अंदर मेरी अयोध्या नगरी में ऐसे ऐसे विवेकवान भी लोग हैं जो अपने द्वारा जीवों की हत्या नहीं होने देना चाहते हैं, एक इंद्रिय जीवों के रूप में घास खोपल पर भी पैर नहीं रखना चाहते, ऐसे सबको बुला करके और वे उपदेश देते हैं, कहते हैं हे महानुभाव, गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया, कर्तृन्वय क्रिया, ये क्रियाएं तीन प्रकार की हैं। क्रिया माने करना, क्रिया माने करना, यानी अपने करने योग्य कार्य तीन प्रकार के हैं। उनमें से गर्भान्वय क्रिया आधान आदि के भेद से 53 प्रकार की है। ध्यान रखे जाना, कितनी? 53। 53 प्रकार की क्रियाएं हैं, यानी जब से एक नारी गर्भ धारण करती है, शिशु को अपने गर्भ में रखती है, उससे लेकर मरण पर्यंत क्या क्या होता है, ये 53 प्रकार की क्रियाएं हैं, जिन्हें पूज्य माता जी ने आदि पुराण के आधार से यहाँ पर दिया है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि दीक्षान्वय क्रियाएं 48 हैं और कर्तृन्वय क्रियाएं 7 हैं। इन सबको मैं संक्षेप में बताऊंगी, आप केवल नाम सुन लीजिए। आधान, प्रीति, सुप्रीति, धृति, मोद, प्रियोद्भव, नामकरण, बहिर्यान, निषद्या, प्रासन, व्युष्टि, केशवाप, लिपि संख्यान संग्रह, उपनीति, व्रतचर्या, व्रतावतरण, व्रताचरण, विवाह, वर्णलाभ, कुलचर्या, ग्रही, ग्रहीषिता, प्रशांति, ग्रह त्याग, दीक्षाद्य, जिन रूपता, जिन रूपता, मौनाध्ययन वृत्तित्व, तीर्थकृत भावना, गुरुस्थानाभ्युदय, गणोपग्रहण, स्वगुरु स्थान संक्रांति, निसंगत्वात्म भावना, योग निर्वाण संप्राप्ति, योग निर्वाण साधन, इंद्रोपपाद, अभिषेक, विधिदान, सुखोदय, इंद्रपद त्याग, अवतार, हिरण्योत्कृष्टता, मंदरेन्द्राभिषेक, गुरु पूजोपलंबन, यौराज्य, स्वराज्य, चक्रलाभ, दिग्विजय, चक्राभिषेक, साम्राज्य, निष्क्रांति, योग सन्मह, आरंत्य, तद्विहार, योग त्याग और अग्र निर्वृत्ति। ये गर्भ से लेकर निर्वाण पर्यंत गर्भान्वय की 53 क्रियाएं मानी गई हैं। महर्षियों ने उन क्रियाओं का विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन यहाँ पर भरत जी ने कहा कि मैं संक्षेप से आपको इन क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। जैसे इसमें हम षोडश संस्कार के की क्रियाएं कराते रहते हैं। गर्भ में संतान 9 माह तक रहती है। प्रथम मास में, उसके पहले भी गर्भाधान क्रिया, फिर प्रथम मास की, फिर तृतीय मास की, फिर पंचम मास की, सप्तम मास की, नवम मास की, और फिर जात कर्म, अन्नप्राशन, बहिर्यान, ये सब क्रियाएं मैंने कई बार आप लोगों को कराई हैं, और पर्सनल भी लोग आकर के कराते हैं। और जैसे ही किसी भगवान का गर्भ कल्याणक होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को पूज्य माता जी के साक्षात मुखारविंद से गर्भ की क्रियाएं प्राप्त हो, मंत्र भी सुनने को मिलते हैं। तो एक आदर्श नागरिक के रूप में बच्चों को आप संस्कारित कर सकते हैं। मैं इन क्रियाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जो जरूरी है उनके बारे में बताऊंगी। बाकी कोई आदि पुराण का अध्ययन करना चाहे तो करें। इसी प्रकार से आप भरत भगवान के चरित्र को सुनते रहें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रहें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझ।